नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, आज हम एक नई अध्ययन श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अध्ययन आपके जीवन का सबसे अधिक अमूल्य, सबसे अधिक उपयोगी और सबसे अधिक तृप्तिकर सिद्ध हो सकता है। जी हाँ, ये वार्तामाला होगी पौलुस प्रेरित के पत्र पर, जो उन्होंने इफिसुस नगर की कलीसिया को संबोधित करते हुए लिखा था। इसका मुख्य विषय है, कलीसिया मसीह यीशु की देह है और मसीह यीशु कलीसिया के सिर। तो आइए सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा को देखेंगे, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
चा प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ। मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन अपने नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज हम बाइबल की पुस्तक में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे और आज हम इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए जिसे आप प्रतिदिन हमारे जीवन में देते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सुधि लीजिए, उन्हें भी अपनी शांति प्रदान कीजिए। इस वक्त हम फिर से अपने आप को, हम सबों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि चार पुरुषों का एक दल सन 62 में रोम से चला और उनका गंतव्य स्थल एशिया माइनर, जो वर्तमान तुर्किस्तान था। उनके पास मसीही विश्वास की चार भव्य रचनाएं थी। यदि ये दस्तावेज आज होते तो अत्यधिक अनमोल होते। रोम के लिए तो एक अज्ञात बंदी के लेखों का कोई महत्व नहीं था, यदि होता तो इन पुरुषों को पकड़ लिया जाता और ये दस्तावेज उनसे ले लिए जाते। जब इन पुरुषों ने प्रेरित पौलुस से अलविदा कहा, तब इनमें से प्रत्येक को पौलुस ने एक पत्र दिया कि अपने क्षेत्र में ले जाए। ये चार पत्र बाइबल में संग्रहित हैं, जिन्हें पौलुस के बंदीगृह पत्र कहते हैं, क्योंकि पौलुस ने ये पत्र बंदीगृह में रहते हुए लिखे थे। पौलुस एक रोमी नागरिक था, अतः उसने अपना अभियोग राजा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की याचना की थी। अब वह प्रतीक्षा में था कि राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, अतः उसे बंदीगृह में रखा हुआ था। इन चार पुरुषों के नाम और निवास स्थान स्पष्ट व्यक्त किए गए हैं। फिलिपी का इपफ्रोदीतुस, जिसके पास फिलिपी की कलीसिया के नाम पौलुस का पत्र था, इसे हम फिलिपियों की पत्री 4:18 में पाते हैं। दूसरा व्यक्ति है इफिसुस का तुखिकुस, जिसके पास इफिसुस की कलीसिया के नाम पौलुस का पत्र था, 6:21 में हम इसे पाते हैं। तीसरा है कुलुसे का इपफ्रास, जिसके पास कुलुसे की कलीसिया के नाम पौलुस का पत्र था, कुलुसियों की पत्री 4:12 में इसे पाते हैं। चौथा है फिलिपोन का भागा हुआ दास उनेसुमस, जिसके पास कुलुसी के फिलिमोन के नाम पौलुस का पत्र था, फिलिमोन की पत्री उसका 10। ये पत्र प्रभु यीशु का कलीसिया, मसीही जीवन और उनके संबंध तथा कार्यों का सर्वांग चित्रण प्रस्तुत करते हैं। ये विभिन्न पक्ष सर्वोच्च स्तर पर मसीही जीवन का प्रदर्शन करते हैं। इफिसियों मसीह की देह कलीसिया को प्रकट करता है, या अप्रत्यक्ष कलीसिया है जिसका सिर प्रभु यीशु है। कुलुसियों प्रभु यीशु को कलीसिया मसीह की देह का सिर प्रस्तुत करता है। इसमें ध्यान केंद्र कलीसिया की अपेक्षा प्रभु यीशु है। इफिसियों के ध्यान केंद्र मसीह की देह है, जबकि कुलुसियों में ध्यान केंद्र प्रभु यीशु है। फिलिपियों में मसीह के साथ मसीही जीवन के सामर्थ्य का प्रकाशन है। फिलिपियों के पत्री 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देख सकता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिमोन में अन्य जाति समाज में क्रियाशील मसीही जीवन की व्याख्या है। उनेसुमिस के स्वामी फिलिमोन को पौलुस ने लिखा 17:18 में, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो इसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। पहली शताब्दी में सुसमाचार व्यवहार कुशल था, हम इफिसियों की पत्री में यही देखेंगे। इफिसियों की पत्री कलीसिया को परमेश्वर के सर्वोत्कृष्ट कृति प्रकट करती है, जो पुराने नियम में नहीं दर्शाया गया है। आप देखिए इफिसियों के पत्र 2:10 में, जी हाँ, यह हस्तकृत किसी भी मंदिर से अति उत्तम है। इसकी रचना जीवित पत्थरों से की गई है और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। यह संसार में मसीह की देह है कि उसी की नाई चलें और शैतान की दुष्टता से कैसे युद्ध करें, जैसे वह करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब कलीसिया इस संसार से कूच करेगी और प्रभु यीशु को दुल्हन स्वरूप प्रस्तुत की जाएगी। डॉक्टर आर्थर टी पियर्सन ने इफिसियों की पत्री को कहा कि वह पौलुस का तीसरे स्वर का पत्र है। किसी ने इसे नए नियम का एलो पर्वत कहा है। यह धर्मशास्त्र की नुकीली चट्टानों का शिखर है। यह कलीसियाई पत्री है। अनेक टीकाकार इसे धर्मशास्त्र के सत्य का सर्वोच्च शिखर कहते हैं। बाइबल के प्रकाश की चरम सीमा है। यह अति सत्य है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि इफिसी की पत्री इतना अधिक गूढ़ अर्थ रखती है कि केवल चयनित यानी कि चुने जन ही इसे समझ पाते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोगों का कहना है कि वे स्वयं को इसके भीतरी क्षेत्र में पाते हैं। स्पष्ट कहूं तो इस पत्री की गहराई को समझने का नाटक भी नहीं कर सकता, न ही इसकी ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास कर पाता है। यह पत्री ऊंची और बौद्धिक है। इस पत्री की विचार सूक्ष्म हवा को ग्रहण करना कठिन है। जी हाँ, जब हम इसका अध्ययन करेंगे तब आप इस सत्य का बोध करने पाएंगे। हम अपना यथासंभव प्रयास तो करेंगे ही। पवित्र आत्मा जो हमारा अगुआ है वह हमारी सहायता करेगा कि हम इसे समझ पाएं। पौलुस की दूसरी यात्रा पर पवित्र आत्मा ने उसे इफिसुस प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने पौलुस का मार्ग रोका। हमें कारण तो नहीं बताया गया है, परंतु यह अवश्य हम जानते हैं कि परमेश्वर का समय सिद्ध होता है। वह उसे बाद में वहां भेजेगा। अतः पौलुस पश्चिम में मकीदुनिया चला गया, फिलिपी, विरिया, एथेंस और कुरिंथ को, और लौटते समय वह इफिसुस में रुका। उसने वह कैसा महान सेवा का अवसर देखा जिसे हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 19 पद में देखते हैं। लिखा है, उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। पौलुस प्रचार कार्य के अवसर से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने फिर आने की प्रतिज्ञा की और तीसरी प्रचार यात्रा पर वहां गया। उसने देखा कि उसकी दूसरी और तीसरी प्रचार यात्रा के मध्य वहां अपोलोस नामक प्रचारक आया था। अपोलोस केवल यूहन्ना के बपतिस्मे का प्रचार करता था, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार का नहीं। आरंभ में तो अपोलोस प्रभु यीशु को नहीं जानता था, परंतु आगे चलकर वह सुसमाचार का महान प्रचारक हुआ। मेरे प्रियो, पौलुस ने इफिसुस में वृहद प्रचार किया। पौलुस ने 2 वर्ष तिरनूस की पाठशाला में वचन सुनाया और इस प्रकार सुसमाचार एशिया के प्रत्येक केंद्र तक पहुंच गया। स्पष्ट है कि इसी समय प्रकाशित वाक्य में व्यक्त अध्याय 1 और 2 कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की थी। तुर्किस्तान का भ्रमण करके और उस स्थान को देखकर आप वहां के पुरातत्व अन्वेषणों को पढ़कर समझ पाएंगे और विश्वास कर पाएंगे कि सुसमाचार प्रचार का सबसे बड़ा सेवा कार्य आज के तुर्किस्तान में किया गया था। जी हाँ, उस युग में वहां करोड़ों लोग थे। वह स्थान रोम का मुख्य स्थान था। यूनान की सभ्यता यूनान की अपेक्षा इसके पश्चिमी तटीय प्रदेश में थी, जहां इफिसुस एक महान धार्मिक केंद्र था। वहां की जलवायु मनमोहक थी और वह एक अद्भुत पर्यटन स्थल था। इस स्थान पर राजा छुट्टियां मनाने के लिए आया करते थे। इसी स्थान पर सुसमाचार का प्रभावी प्रवेश हुआ था। इफिसुस एशिया माइनर वरन संपूर्ण पूर्वी क्षेत्रीय रोमी साम्राज्य का मुख्य नगर था। रोम के बाद उसका दूसरा स्थान था। इस नगर की स्थापना हित्तीतेस द्वारा लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में की गई थी। यूनानियों के प्रवेश तक लगभग 1000 वर्ष इस नगर को पूर्वी नगर कहा जाता था। वहां वास्तव में पूर्व और पश्चिम का मिश्रण था। वह स्थान किपलिंग के कथन के विपरीत था कि पूर्व पूर्व ही रहेगा और पश्चिम पश्चिम रहेगा। वहां पूर्व और पश्चिम का मिलन था। 25 वर्षों तक इफिसुस संसार का सबसे महान नगर था। वह एक बंदरगाह था, परंतु आज रेत से भर गया है। आज वह समुद्र से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। पौलुस के युग में वे श्वेत संगमरमर के मार्ग तक जहाज ला सकते थे। वह एक बहुत चौड़ा मार्ग था जिसका संगमरमर पर्वत परायण से आया था। इफिसुस स्थित डायना का मंदिर प्राचीन संसार के सात आश्चर्य कर्मों में से एक था और यूनानियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा मंदिर था। 418x239 फुट के क्षेत्रफल में बना हुआ था। उसका आधार दलदल पर चमड़े और कोयले का था जिससे कि भूकंप से प्रभावित न हो। इफिसुस के निवासियों की कला और धन संपत्ति का इसमें महान योगदान था। उसमें 127 स्तंभ थे जिन पर सुंदर नक्काशी और रंग किया गया था और अपेलेस की कलाकृतियां, सिकंदर महान द्वारा बिजली का फेंकना जैसे चित्रकारी भी थी। उसमें जनन देवी डायना की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति जिसके अनेक वक्ष थे। इस मंदिर में अनैतिकता का बोलबाला था। वहां मंदिर की प्रतियां तैयार करने का चांदी का वृहद व्यवसाय था। वहां आने वाले इस स्मारकों को ले जाते थे जिसके कारण काम करने वालों को बड़ा आर्थिक लाभ होता था। मेरे मित्रों, पौलुस वहां गया और वहां 3 महीने आराधनालय में प्रचार करता रहा। तदुपरांत उसने तुर्नुस की पाठशाला में 2 वर्ष प्रचार किया और परिणाम स्वरूप प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। यह संभवतः पौलुस की प्रचार सेवा की चरम सीमा थी। इफिसुस के निवासियों ने सबसे अधिक बाइबल शिक्षा सुनी थी। यही कारण था कि पौलुस इस पत्र में व्यक्त गहरी सच्चाइयों का उल्लेख कर पाया। पहला कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय उसके 8-9 पद में पौलुस लिखता है, परंतु मैं पेंतिकोस्त तक इफिसुस में रहूंगा क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। पौलुस के प्रचार के कारण मूर्ति पूजा कम हो रही थी जिसके परिणाम स्वरूप सुनारों का काम बाधित हो रहा था। इस बात पर नगर में गदर मच गया था। पौलुस जीवित परमेश्वर का सुसमाचार और मसीही जीवन का प्रचार करता था। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पौलुस की वहां जान बचाई जिससे उसे प्रचार करने का प्रोत्साहन मिला। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 23-41 पद में हम इसे पाते हैं। पौलुस इफिसुस की कलीसिया से प्रेम करता था। इफिसुस के विश्वासियों से उसकी अंतिम भेंट एक हार्दिक विदाई थी। इसे हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 17-38 पद में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मसीह को ग्रहण करने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी। मेरे विचार में इतिहास के किसी भी युग की तुलना में सुसमाचार इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी रहा है और मेरे विचार में इफिसुस की कलीसिया आत्मिकता में सबसे ऊंची थी। मुझे आश्चर्य होता है कि उस अन्य जाति नगर के निवासी इस पत्र की गहराइयों को समझने में सक्षम थे। यदि वे नहीं समझते तो पौलुस क्यों उन्हें यह सब बातें लिखता। इसके अतिरिक्त प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एशिया की 7 कलीसियाओं में इफिसुस की कलीसिया का नाम सबसे ऊपर है। ये कलीसियाएं कलीसिया इतिहास की गाथा सुनाती हैं। इफिसुस की कलीसिया सर्वोत्तम थी और आत्मिक स्तर पर सबसे ऊंची थी। पवित्र आत्मा द्वारा इफिसुस की कलीसिया को दिया गया आत्मिक स्तर आप और मैं आज अंतर्ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वह कलीसिया प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करती थी और उसके अत्यधिक निकट थी। मैं अनेक बार पास्टरों से जब बातचीत करता हूं तो मुझे पता चलता है कि आज की कलीसियाओं में सेवा करना वे चाहते हैं, परंतु मैं यह मानता हूं कि हमें स्वीकार करना होगा कि हम प्रभु यीशु से बहुत दूर हैं। हम कार्यक्रमों, कलीसियाई गतिविधियों और पद प्राप्ति में ऐसे खो गए हैं कि हम प्रभु यीशु से अधिकाधिक दूर होते जा रहे हैं। एक आवश्यक प्रश्न है, हम उससे कितना प्रेम करते हैं। पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों को लिखा कि प्रभु यीशु ने उनसे प्रेम किया और उनके लिए अपने आप को दे दिया। क्या हम उस प्रेम को लौटाते हैं? क्या हम उसको प्रतिक्रिया दिखाते हैं? क्या हम कह सकते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया? इफिसियों की पत्री द्वारा हमें मसीह के अति निकट आ जाना चाहिए। मेरे प्रियो, विचारकों का कहना है कि बाइबल की 2 पुस्तकों को समझना असंभव है, इफिसियों की पत्री और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। दूसरी और मुक्त विचारवाद कहता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रतीकात्मक है और इफिसियों की पत्री हमारी बुद्धि से परे है। मेरा कहना तो यह है कि बाइबल की ये दो पुस्तकें ही ऐसी पुस्तकें हैं जो गणित और तर्क के आधार पर व्यवस्थित की जा सकती हैं। इनसे अधिक तर्क सम्मत अन्य कोई पुस्तक नहीं है। वर्षों पूर्व में मनुष्यों की बातें सुनकर ऊब गया था। वे कहते थे, मैं बाइबल पर आरंभ से अंत तक विश्वास करता हूँ, जबकि वे जानते ही नहीं थे कि बाइबल के आरंभ और अंत के बीच में क्या है। वे केवल एक धार्मिक दिखावा करते थे। यदि कोई बाइबल में विश्वास करे तो वह उसके विषयों को जानने का जिज्ञासु अवश्य होगा। हमें तौर तरीकों, युवा पीढ़ी को समझाने के तरीकों और कलीसिया की उचित व्यवस्था के नाटक का त्याग करके बाइबल में व्यक्त बातों को समझना और सीखना होगा। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और जिसमें कुछ बातें इस प्रकार से कही जाती हैं कि बाइबल का संक्षिप्त ज्ञान, तो मैंने पाया कि इफिसियों की पत्री और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सबसे आसान दो पुस्तकें हैं जिनकी रूपरेखा तैयार करना सबसे आसान काम है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे तर्क सम्मत हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं इन पुस्तकों में लिखी सब बातें समझता हूं, परंतु यह कह रहा हूं कि वे तर्क सम्मत और रूपरेखा बनाने हेतु आसान हैं। इफिसियों की पत्री में पौलुस तर्क प्रस्तुत करता है और प्रकाशित वाक्यों में यूहन्ना से कहा गया था कि उसने वर्तमान और भविष्य के बारे में जो देखा उसे लिख दे। उसमें स्पष्ट तीन गुना विभाजन है और वह पुस्तक 7-7 के आधार पर व्यवस्थित की गई है। आप इससे अधिक उत्तम लेख नहीं पाएंगे। इफिसियों की पत्री भी तर्क सम्मत है। 6 अध्यायों में प्रथम 3 अध्याय स्वर्गिक बुलाहट से संबंधित हैं और सिद्धांतगत हैं। अंतिम 3 अध्याय कलीसिया के सांसारिक आचरण से संबंधित हैं, जो अत्यधिक व्यवहारिक हैं। कलीसिया का सिर है जो स्वर्ग में है, वो प्रभु यीशु है। हमारी पहचान उससे है, परंतु कलीसिया के पांव पृथ्वी पर हैं। पौलुस हमें स्वर्ग में नहीं बैठाता है। वह कहता है इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 1 पद में, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। दूसरे शब्दों में, हे विश्वासियों, स्वर्ग में उपस्थित होकर प्रभु यीशु में अपने स्थान पर गर्व करना अच्छा है, परंतु कृपा करके अपनी ऊंची उड़ान से उतरकर चलना आरंभ करो। हमें स्मरण रखना है कि पौलुस के युग में विश्वासी रोमी संसार के अन्य जातीय समाज में रहते थे। अतः इस पत्री का प्रथम भाग शिक्षा है और दूसरा भाग व्यवहारिकता है। इस प्रकार यह पत्री तर्क के आधार पर व्यवस्थित है। हमें दोनों की आवश्यकता है। हमें केवल प्रथम 3 अध्यायों में ही रुके नहीं रहना है। निस्संदेह वे अति उत्तम शिक्षाएं हैं, परंतु उसकी शिक्षा को हमारे जीवन में व्यवहारिक होना है। अध्याय 4 में पहुंचते ही हम देखते हैं कि कलीसिया एक नई मानव जाति है। उसे संसार में एक नए व्यवहार का प्रदर्शन करना है, नई सृष्टि रूप में आचरण करना है। तब अध्याय 5 में कलीसिया एक दुल्हन है, परंतु आज नहीं। इस भ्रम में आप न रहें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय के 2 पद में पौलुस कहता है, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो, अर्थात मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा संबंध बना देता हूँ, क्योंकि कलीसिया एक दिन मसीह की दुल्हन होगी। अध्याय 6 में कलीसिया एक सैनिक है। किसी ने मुझसे कहा, यह तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि कलीसिया एक दुल्हन है और वह एक सैनिक भी है। अधिकांश विवाह में विवाह पश्चात युद्ध आरंभ हो जाता है। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं है, वह व्यवहारिकता प्रकट कर रहा है। कलीसिया को वैरी से युद्ध करना है। संसार में लगातार युद्ध चल रहा है। तुरही फूंकी जा चुकी है। हमें आज परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर इस पुस्तक के परिचय को हमारे सामने रखा गया है ताकि हम इस पुस्तक को अर्थात पत्री को आसानी से और सरलता से समझ सकें और अपने जीवन में इसे ग्रहण कर सकें। अगले अध्ययन में हम इस पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस परिचय के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में इस बात को जान लिया है कि एफिसियों की पत्री किस परिस्थिति में लिखी गई है और किसने लिखा है, ताकि जब हम अध्ययन करें आप इसको ग्रहण कर सकें, समझ सकें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने